वाणी बड़े ही संक्षिप्त रूप में लिमिटेड वर्ड्स में बड़ा अच्छा मार्गदर्शन करती है यदि इस पर ठीक प्रकार से ध्यान दें। संस्कृत तो बहुत लोगों की समझ में नहीं आती, लेकिन हिंदी सभी लोग समझ लेते हैं लगभग। तो इसलिए ये वाणी क्योंकि ईश्वर की सीधी आवाज है जो हमारे कानों तक आ रही है, इस पर भी यदि हम ध्यान ना दें, इस पर भी भरोसा ना करें, इसके दिए हुए मार्गदर्शन के अनुसार हम अपनी बुद्धि के निश्चय को ना बदलें, फिर संसार में किसी और मेथड से हमारा कल्याण संभव नहीं। अंत में सब कुछ की बात को ही समझना पड़ता है, वाणी की बात को ही समझना पड़ता है और अपनी बुद्धि के निश्चय को ठीक करना पड़ता है। नहीं तो ये मनुष्य जन्म ऐसे ही निरर्थक चला जाता है, संसार के सुख की आशा में दुख भोगते भोगते जिंदगी खत्म हो जाती है। तो वाणी सबसे पहले जीवन का उद्देश्य बता रही है, भक्ति कारण मानुष देह पाई, बिन हरि सिमरन बे अर्थ गवाई। मानव देह प्रभु की भक्ति के लिए मिली है, अर्थात प्रभु को जानने के लिए मिली। यदि हमने प्रभु का सिमरन ही नहीं किया, उसकी याद ही नहीं करी, उसको जानने की कोशिश ही नहीं करी, तब वाणी निर्णय दे रही है कि बिन हरि सिमरन बे अर्थ गवाई। हमारे अंदर संसार की सफलता का कितना अहंकार होता है, अपने जीवन भर भी उसी की प्लानिंग करते हैं, अपने परिवार के लिए भी उसी की प्लानिंग करते हैं, अपने समाज के लिए भी उसी की प्लानिंग करते हैं। परंतु जब कोई ऋषि धरती पर आता है, कोई अवतार धरती पर आता है, कोई सदगुरु धरती पर आता है, वो हमसे उलट बात कहता है। क्यों कहता है? क्योंकि हम जो संसार का अनुभव कर रहे हैं वो इंद्रियों के द्वारा अनुभव कर रहे हैं। पांचों हमारी जो ज्ञान इंद्रियां हैं जिसके द्वारा संसार का अनुभव होता है, इनकी पांचों की दौड़ बाहर की ओर है। कान बाहर की आवाज सुनते हैं, नासिका बाहर की खुशबू सूंघती है, आंख बाहर का दृश्य देखती है, त्वचा बाहर सख्त मुलायम सर्दी गर्मी का एहसास करती है। इस प्रकार जो जिज्ञासा है वो बाहर के स्वाद लेती है। तो पांचों ज्ञान इंद्रियों का जो हमारा अनुभव है वो बाहर का अनुभव है, लेकिन यदि विचार करें बेचैनी कहां होती है? इन पांचों ज्ञान इंद्रियों के द्वारा हमको मनचाही चीज ना मिले तब बेचैनी कहां होती है? एक साधारण सा शब्द हम यूज कर लेते हैं, मन में बेचैनी होती है। मन में संकल्प होता है, इच्छा होती है, संकल्प के अनुसार उसका जो इलाज है, उसका जो उपाय है, वो विकल्प मन में उठता है, लेकिन उसके द्वारा असंतुष्ट, उसके द्वारा दुखी, उसके द्वारा खुश मैं होता हूं। तो मैं मन का मालिक हूं, थोड़ा सा विचार करके मैं बड़ी आसानी से ये बात सीख सकता हूं और कह भी सकता हूं। मेरे मन में एक इच्छा उठ रही है, वो यदि इच्छा पूरी हो जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। हम ये साधारण सा सेंटेंस यूज करते हैं, साधारण सा वाक्य यूज करते हैं, लेकिन कभी भी इस पर विचार नहीं करते, क्योंकि हमने हमेशा बाहर की चीजों पर विचार करना सीखा है, अपने अंदर की बात पर कभी विचार करने की जरूरत ही नहीं समझी। अंदर की बात की विचार जब हम उसकी सोचते हैं तो कहते हैं डॉक्टर विचार कर लेगा, मेरा दिल ठीक धड़कना चाहिए, सांस ठीक आनी चाहिए, ब्लड का सर्कुलेशन ठीक चलना चाहिए, ब्लड प्रेशर ठीक रहना चाहिए, वो डॉक्टर विचार कर लेगा। तो अर्थात शरीर ही सब कुछ है, इसके ऊपर मेरी कोई सोच ही नहीं। इसीलिए हमारे घर में कोई नहीं कहता इस बात को, वही वाणी कह रही है कि भक्ति कारण मानुष देह पाई बिन हरि सिमरन बे अर्थ गवाई। तो सत्संग में जब ये बात सुनाई जाती है तब हम उसको बड़े ही साधारण ढंग से सुन लेते हैं, उसका अर्थ भी समझ लेते हैं, लेकिन उस पर कभी भी गहरा मनन करने की जरूरत ही नहीं समझते। ये भी भूल जाते हैं कि प्रभु ने कृपा करके ये वाणी अवतरित की है किसके लिए की है, गुरु के लिए की है क्या? और वाणी के प्रति श्रद्धा सारे समाज की होती है, चाहे गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहब की वाणी हो, चाहे कहीं गीता का पाठ हो रहा हो या महाराज जी की वाणी भी ही कहीं पाठ हो रहा हो, बड़ी श्रद्धा से सुनेंगे उसे। लेकिन जब करने का वक्त आता है तब उस पर विचार करने की जरूरत ही नहीं समझते। वाणी कह रही है कि बिन हरि सिमरन बे अर्थ गवाई, इसका मतलब मैंने पूरे मानव जन्म का केवल दुरुपयोग किया है, इसके अलावा मैंने सदुपयोग किया ही नहीं। इसका सीधा सीधा अर्थ तो यही बनता है, जीने का कोई अर्थ ही नहीं रहा। नहीं तो ये वाणी बात ये क्यों कहती, इसी के ऊपर कह रही है वाणी कि बिना विवेक मानुष जो होई पशु समान जीवन सुख हो, बे अर्थ ही नहीं कमाया बल्कि हमने पशु जीवन व्यतीत किया। और विवेक क्या है, जो ये वाणी हमको सिखाना चाह रही है, जो संदेश दे रही है, यही विवेक। इसको मैंने जैसे कि कक्षा एक से लेकर एमए तक की पढ़ाई करी, कक्षा एक से लेकर मैंने इंजीनियरिंग तक की पढ़ाई करी, तरह तरह की पढ़ाई करी पैसा कमाने के लिए, संसार में सफल होने के लिए, लेकिन सत्पुरुष के हिसाब से ईश्वर के अनुसार यदि हम सोचें तब हमने मानव जन्म बेअर्थ ही खो दिया। वो क्यों कह रहे हैं ये बात, उनको वाणी बड़े ही एक साइंटिफिक तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से हमारे सामने विचार रखती है। बहुत लंबी चौड़ी वाणी की बात नहीं होती, वाणी की बात बड़ी सरल सी छोटी सी होती है, लेकिन विचार उस पर लंबा होता है। ये बात वाणी क्यों कह रही है कि भक्ति कारण मानुष देह पाई बिन हरि सिमरन बे अर्थ गवाई, उसका कारण क्या है? वो कहते हैं त्रिखा ना जाए ना मन सुख भासे, आस आस में लयो काल गरस। हम ईश्वर की आवाज ना सुने, हम स्वतंत्र हैं, संसार की आवाज सुन सकते हैं, लेकिन संसार में हम करते क्या है, एक सुख की ही आशा लेकर संसार में जीवन जीते। एक बालक जो घर में हमारे एक वर्ष की आयु का होता है, आप उसके जीवन के लिए क्या आशा करते, ये बुद्धिमान निकले, इसकी पढ़ाई लिखाई बड़ी अच्छी हो ताकि इसकी कमाई बड़ी अच्छी हो, अच्छा बिजनेस सेट हो, अच्छी सर्विस इसकी लगे, अच्छे घर में इसकी शादी हो जाए, सुखी जीवन व्यतीत करें। एक कल्पना सारे माता पिता के बच्चों के बारे में यही है। इसके ऊपर कभी कोई बात सुनते हैं आप? क्यों ये कल्पना होती है? क्योंकि अपने जीवन के बारे में भी मैंने यही आशा की। लेकिन यदि पूरे जन्म का जो मैंने होश में व्यतीत किया उसका वाणी के अनुसार यदि मैं अपना विश्लेषण करना शुरू करूं तो मैं एक ही चीज पाऊंगा कि त्रिखा ना जाए ना मन सुख भास। पूरे जन्म में कोई एक वर्ष भी मेरा ऐसा नहीं बीता कि मन के अंदर कोई वासना की इच्छा की प्यास ना सता रहे, और मैं दिल से कह सकूं इस एक वर्ष में मेरा मन सुखी रहा, अर्थात मन के द्वारा मैं सुखी रहा। तो एक वर्ष भी जीवन में आता ही नहीं। तो अब बताइए, आशा में ही मैं जन्म व्यतीत करता हूं, आशा में ही जन्म या आशा में मर जाए, मंगत घने कलेश में नित नित प्यास आ रहा है। यदि ठीक विश्लेषण करो अपने जीवन का, हर वर्ष का विश्लेषण करके देखो, तो मेरी बुद्धि का यही निर्णय होगा कि ईश्वर वाणी के रूप में मुझको ये निर्णय दे रहे हैं। तो अब बताइए कि मनुष्य आशा लेकर जीता है, तो आशा लेकर इस संसार से विदा हो जाता है, मिला क्या इसको? तो इसीलिए मनुष्य के जीवन का यदि वास्तव में देखा जाए, ये उसकी सफलता नहीं है, ये उसके जीवन की पूर्ण विफलता है। लेकिन प्रश्न ये उठता है, ये भक्ति होगी कैसे? उद्देश्य तो वाणी ने बता दिया, और क्यों उद्देश्य है मानव जन्म का, उसका कारण ही बता दिया कि तू सुख की आशा लेकर संसार में जीवन व्यतीत करता है, और सुख की आशा लेकर ही संसार से विदा हो जाता है, तो जीवन में असंतुष्ट ही रहता है। इसलिए वो कौन सी जीवन की बात कर रहे हैं, ऐसा जीवन जीने की बात कर रहे हैं ताकि ये भक्ति वाला कार्य हमारा मनुष्य जन्म में हो सके, उसका रास्ता बता रहे हैं। मरण काल छिन छिन विचारे उपरस जीवन मन अंतरधारे। यदि ईश्वर भक्त का जो ईश्वर को जीवन का लक्ष्य लेकर जीता है, उसके जीवन की या जीने की दिशा क्या होती है? मरण काल छिन छिन विचारे, क्यों? संसारी तो कोई मौत को याद करना नहीं चाहता, बल्कि मौत को भूलना चाहते हैं। कहते उस मनहूस घड़ी को हम क्यों याद करें? लेकिन जो अध्यात्म का राही है या ईश्वर का राही है, वो इस अध्यात्म विद्या के विज्ञान को, या यूं कहें अपने विज्ञान को समझता है। मरण काल का मतलब ये देह कभी भी समाप्त हो जाती है। कहेंगे मरना तो सबने है, हम भी मर जाएंगे, क्या हो गया, कौन सी बड़ी बात है? बात बहुत बड़ी है। यदि मनुष्य मर जाए तो छुट्टी हो जाए, सारे पापों से सारी मुसीबत से मुक्ति हो गई उसकी, लेकिन ऐसा होता नहीं। मात्र देह मरती है, मेरी इंद्रियां भी बच जाती हैं, मेरा मन भी बच जाता है, मेरी बुद्धि भी बच जाती है, और मेरी चेतना भी बच जाती है। इस बुद्धि को और चेतना को मिलाकर जीव कहा जाता है, जो निर्णय भी करे और होश में भी हो। तो मैं निर्णय करता हूं, मैं होश में भी हूं, मैं जानता भी हूं, तो मेरे अंदर चेतना भी है जानने वाली, और निर्णय करने वाली सामर्थ्य भी है। मैं निर्णय कर सकता हूं क्या ठीक है क्या गलत है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इन दोनों को जब मिला दिया जाता है, निर्णय शक्ति को या निश्चयात्मक शक्ति को और चेतना को, इसको फिर मिलाकर जीव कहते हैं। तो इंद्रियां भी बच गई, मन भी बच गया, और जीव भी बच गया, और इसी मन के अनुसार मेरी नई देह प्रभु तैयार कर देते हैं। जिस प्रकार आज मेरी देह है, इस प्रकार नई देह भी तैयार हुई है। यदि शास्त्र के अनुसार सोचे तो मनुष्य के जीवन में जो पाप और पुण्य कर्मों का बैलेंस होता है, अर्थात लगभग ये दोनों बराबर होते हैं, तो कहते हैं उसको मनुष्य योनि प्राप्त हो सकती है, नहीं पहले हो जाती। यदि पाप व्यक्ति ज्यादा है, आपने संसार में लोगों को दुख ज्यादा पहुंचाया है अपने कर्मों के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा, तब आप मनुष्य जन्म के अधिकारी ही नहीं रहते, आपको पशु योनि प्रदान कर दी जाती है, आप पशु पक्षी बन जाते हो। जीवन उसमें भी, मन उनके अंदर भी है, यही पांचों ज्ञान इंद्रियां उनके अंदर भी है, लेकिन वहां बुद्धि का निर्णय कोई नहीं है। इसीलिए उस लाइफ को इंस्टिंक्टिव लाइफ कहा जाता है। जैसा स्वभाव उसके मन के अंदर मौजूद है, उसके अनुसार वो जीवन जीता है, अर्थात पूरी तरह से प्रारब्ध के आधार अधीन उसका जीवन है। स्वतंत्र जीवन जीने की उसके पास कोई सामर्थ्य कोई बुद्धि है ही नहीं, लेकिन मनुष्य जन्म में ये कला हमको मिली हुई है। भगवान ने बुद्धि हमको दी है, और इस बुद्धि की ट्रेनिंग के लिए वही प्रभु जो अंतर्यामी है, गुरु बनकर बाहर प्रकट होते हैं, अवतार बनकर बाहर प्रकट होते हैं, फिर हमारे लिए शास्त्रों की रचना करते हैं। ताकि हमारी बुद्धि उसको सीख सके और उस सीख के अनुसार मनुष्य जन्म व्यतीत कर सके। ऐसा ना हो कि शरीर तो मनुष्य का है लेकिन जीवन पशु के समान है, पक्षी के समान है या उससे भी बदतर है। यदि पाप पर रहे तो उससे भी निकृष्ट जीवन है। इसलिए संत अवरास ने वहां जी लिख रहे हैं कि मनुष्य जन्म लेकर यदि मनुष्य सतमार्ग पर नहीं चलता तो उसका जीवन फिर क्या है, पशु से भी नीच। पशु से नीच क्यों है, क्योंकि पशु कोई भी पाप नहीं करता, उसका बुद्धि ही नहीं है, उसका निर्णय कोई होता ही नहीं। जैसा प्राण ईश्वर ने दिया है उसका शरीर वैसे ही कार्य करता है। कि मेरे पास बुद्धि है, शरीर तो मेरा भी प्राण तो सारे कार्य करता है लेकिन बुद्धि का निर्णय बदलने में मैं स्वतंत्र हूं। इसलिए मेरे लिए प्रभु शास्त्रों की रचना करते हैं, गुरु रूप में आकर मेरा मार्गदर्शन करते हैं। इसका यदि मैं लाभ ना उठाऊं और ऐसे ही जीवन बिता व्यतीत होता रहे मेरा, तो फिर ये मनुष्य जन्म निर्थक ही चला जाता है। तो सारे मनुष्य आप आशा नहीं करते कि ऐसा सोचेगा, कम से कम उन लोगों से जरूर आशा की जाती है जिनको ये बातें सुनने का सौभाग्य मिला है, जिनको ये वाणी पढ़ने का सुनने का सौभाग्य मिला है, इसको समझने का सौभाग्य मिला है, उनको तो इन बातों पर गंभीर चिंतन करना ही चाहिए। तो जीने का रास्ता क्या बता रहे हैं कि मरण काल छिन विचार है। मरण काल इसलिए विचार करना है कि यहां से मैंने कमाई कर साथ ले जानी, मैं क्या साथ में लेना लेके जाना चाहता हूं, उसकी तैयारी मैंने आज से ही शुरू करनी है। कि मौत का पता नहीं एक साल बाद आएगी, दो साल बाद आएगी या 20 साल बाद आएगी, तो संस्कार का निर्माण मैंने होश में रहते हुए करना है। और सिर्फ जीवन कैसा, इंद्रियों का जीवन कैसा करें, उपरस जीवन मन अंतर धारे, मेरी हर मामले में एक प्रायोरिटी होती है, ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, ये पसंद है ये ना पसंद है, तो द्वंद चक्र लेकर मैं जीता हूं। वाणी क्या करिए कि उपरस जीवन, संसार के भोगों में मर्यादा धारण करते हुए आप शरीर की जरूरत पूरी करने के लिए वस्तुओं का उपयोग करते हो, जो भी आपकी जरूरत है शरीर की, लेकिन शौक नहीं पालते हो। जो शौकीन मिजाज होता है वो उपरस जीवन, उपरस का मतलब है न्यूट्रल, किसी को अरहर की दाल पसंद है, किसी को मूंग की दाल पसंद है। अब उपरस क्या हुआ इसके अंदर कि अरहर की मिल गई तब भी ठीक है, मूंग खाने को मिल गई तब भी ठीक है, वो अपनी प्रायोरिटी को छोड़ देता। शरीर का स्वास्थ्य ना बिगड़े इस पर तो ध्यान देता है लेकिन स्वाद पर वो ध्यान नहीं देता, वो हर चीज को वो एक न्यूट्रल भाव से स्वीकार कर लेता है। तो हर मामले में ये उपरस जीवन, जिसमें इसका अंदर रसहीन जीवन नहीं होता है, कहीं हम ऐसा ना समझ लेते, जीवन उपरस होता है अर्थात रस की प्योरिटी हमारी नहीं होती। हम दो चीजों में से एक सिलेक्ट करते ना हर मामले में, ये पसंद है ये ना पसंद है, ये अच्छा है ये बुरा है। तो उपरस का मतलब न्यूट्रल जीवन। ये न्यूट्रल जीवन कब हो सकता है, जब अंतर्यामी ईश्वर को प्राप्त करने के लिए आप जीते हैं, तभी ये उपरस जीवन आप व्यतीत करोगे, नहीं तो कभी नहीं करोगे, आपके जीने का मजा ही चला जाएगा। भले ही सारी जिंदगी आप निराश होते जीते रहो, आशा की प्यास लेके जीते रहो, लेकिन आपको जीवन नीरस जैसा लगेगा क्योंकि लक्ष्य कोई नहीं है आपका। लेकिन जो ये उपरस जीवन व्यतीत कर रहा है उसका बहुत बड़ा लक्ष्य है कि वो अंतर्यामी ईश्वर के नजदीक पहुंचा। जैसे मन मेरा देह के अंदर है, ज्ञान इंद्रिया मेरी देह के अंदर है, बुद्धि मेरी देह के अंदर है, उसी तरह मेरा ईश्वर भी तो मेरे जीवन देह के अंदर है। ये शारीरिक जीवन को तो वही चला रहा है, मैं तो शारीरिक जीवन को नहीं चला रहा। इसीलिए होश में रहते हुए जब मैं इस प्रकार आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करता हूं, तब एक दिन मेरे जीवन में ऐसा आता है कि जो संसार के इतने लवाजमात थे या इतने भोग विलास थे, इनके प्रति मेरे अंदर, मैं नफरत तो नहीं कहूंगा, मेरे अंदर उपरसता आ जाता है। ये मिले ठीक, ना मिले तो ठीक, क्योंकि मन का शौक क्या हो जाता है, फिर अंतर्यामी ईश्वर की याद करना आ जाता है। देखिए बुद्धि का निर्णय जब आपका दुरुस्त होता है, उसके अनुसार जब कोशिश करके आप तप करते हो, जीवन जीते हो, शरीर में कष्ट सहना पड़ता है, सिमरन करने बैठते हो तो किसी को घूमने का प्रोग्राम छोड़ना पड़ता है, किसी को टीवी देखने का प्रोग्राम छोड़ना पड़ता है, किसी को अन्य जगह से समय बचाना पड़ता है, उसमें कष्ट होता है, मन के अंदर निराशा जैसी आती है। लेकिन उस तप से जब आप गुजरते हो, सुबह शाम एक एक घंटा ईश्वर की याद के लिए निकालते हो, तो जब उसके संस्कार बन जाते हैं और बुद्धि के अंदर धीरे धीरे सत्संग श्रवण करते करते, शास्त्रों का स्वाध्याय करते करते बुद्धि का निर्णय बदलता है कि नुकसान किसमें है, फायदा किसमें, तब आपकी बुद्धि में इतना बल आ जाता है कि वो मन की वासना पर, मन की इच्छा पर वो कंट्रोल करने में समर्थ हो, ये सफल हो, उसको अपना कल्याण किस बात को अपनाने में है, इसका निर्णय बुद्धि का बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है, इसलिए वो मन के चंगुल में नहीं फंसता। तो जिधर मन को दौड़ाना चाहता है उधर उसका मन दौड़ता है, जहां से वो रोकना चाहता है वहां से वो रोक सकता है, उसकी बुद्धि में इतनी सामर्थ्य डेवलप हो जाती है। इसीलिए ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे ईश्वर भक्ति के, ईश्वर प्रेम के संस्कार अपनी देह के अंदर विकसित कर लेता है और उन संस्कारों के बल पर उसकी वृत्ति ऐसी बन जाती है कि चलते फिरते भी, घर का काम करते हुए भी, समाज में व्यवहार करते हुए भी अंदर ईश्वर की याद भरी रहती है, ईश्वर का होश उसके अंदर बना रहता है। जिस प्रकार कोई महिला मार्केट में सौदा खरीदने जाए, कोई काम करने जाए, अपने बच्चे को घर पर छोड़कर आती है किसी के आश्रय, नौकरानी के आश्रय या घर वालों के आश्रय, लेकिन उसके मन में एक चिंता बनी रहती है, एक याद बनी रहती है कि पता नहीं वो बालक छोटा है, कोई जानता नहीं है, दुखी तो नहीं होगा, तो उसकी याद उसके मन के अंदर निरंतर बनी रहती है। ठीक उसी प्रकार जब मैं संसार के कार्य करता भी हूं तो करना ही पड़ेंगे, क्योंकि प्रारब्ध आपका जैसा है वैसे तो शरीर कार्य करेगा ही, लेकिन आपकी जो मानसिक वृत्ति है, आपकी जो तवज्जो है, जिसको सुरत कहते हैं, ये जो है आपकी जो चेतना है या कॉन्शियसनेस है, ये आपके उस चीज में पड़ी रहती है जो आपके जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो जिस बुद्धि में होश है उसके लिए जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज ईश्वर होता है, वो अंतर्यामी है, वही एक ऐसी सत्ता है जो इस देह की मौत के वक्त भी मेरा संग नहीं छोड़ती, मेरे सारे मन के संस्कारों को जो इस जन्म में मैंने बनाया उसको सुरक्षित रखती है, मेरे स्वभाव को सुरक्षित रखती है, जिन कर्मों के फल को मैं नहीं भोग पाया उन कर्म फल को भी सुरक्षित रखती है, और मेरे कर्मों के अनुसार अगला जन्म भी मेरा तैयार करती है, वहां मेरा प्रारब्ध भी वो तैयार करती है, और अगला जन्म फिर मुझको उस प्रारब्ध के अधीन रहते हुए व्यतीत करना पड़ता है, लेकिन फिर भी अंदर ईश्वर भक्ति के लिए मैं स्वतंत्र होता हूं, क्योंकि ईश्वर भक्ति का प्रारब्ध से कोई संबंध नहीं है, इसका संबंध स्वभाव से है। आप जब चाहे कहीं भी बैठे हो, मन में क्या याद कर रहे हो, किसी को बाधा पहुंच रही है क्या? किसी को नहीं पता कौन क्या याद कर रहा है। तो ईश्वर भक्ति के लिए ये जीव पूर्ण स्वतंत्र है, मन में जो चाहे याद कर सकता है, बुद्धि में जिसकी चाहे इंपॉर्टेंस समझ सकता है। तो सत्संग का जो अर्थ है, यही कहिए सत्संग का जो प्रभाव है, वो केवल यही होता है कि बुद्धि का निर्णय बदल देता है सत्संग, और मनुष्य जो मन के सुख के लिए, यही कहिए इंद्रिय भोग के लिए अपने जीवन को लक्ष्य बनाकर जो जीवन जीता है संसार में, इस लक्ष्य के प्रति वो सचेत हो जाता है, अर्थात वो जानता है कि ये लक्ष्य मैंने गलत बनाया, और इसकी जगह बुद्धि का निर्णय ये हो जाता है कि मनुष्य जन्म अंतर्यामी ईश्वर को जानने के लिए मिला है, परम शांति केवल उसी के अंदर है, परम खुशी केवल उसी के अंदर है। परम क्यों कहते हैं? क्योंकि वो एक बार उसको मिल जाती है वो फिर उसकी कभी छीनती नहीं। इसलिए जीवन की सफलता ईश्वर के प्रति अपने निश्चय को बदलने में है, संसार के निश्चय को बदले और मन में ईश्वर के निश्चय को दृढ़ करें, और ताकि ईश्वर की हर वक्त हमारे मन में याद बनी रहे, और जीवन की सफलता उस ईश्वर की भक्ति में देखें, संसार की भक्ति में नहीं। ओम बुद्ध।